जय गोपी गोपीनाथ, जय गोपी गोपीनाथ, गोपी गोपीनाथ, जय गोपी गोपीनाथ। जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, प्रभु पदा, जय प्रभु पदा। जय अलालनाथ, जय अलालनाथ, अलालनाथ, जय अलालनाथ। श्री अलालनाथ भगवान की, श्री गोपी गोपीनाथ भगवान की, श्री गौड़िया नाथ गौरंग महाप्रभु की। मैं ये जानता हूं कि आप लोग थके हुए हो, लेकिन तपस्या तो तब होगी जब आप थके हुए हो, फिर भी आप उत्साह से सुनने वाले हो, क्योंकि शरीर का धर्म ऐसा है कि शरीर तो थक जाता है, हम भी थक जाते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि विशेष बात नहीं है। लेकिन जब आप कथा सुनेंगे तो मेरी आशा है कि आपकी थकान निकल जाएगी और आपका उत्साह बढ़कर आगे आएगा, ऐसे मेरी उम्मीद है। एक मतलब ना भाबड़ी आशा वैसे क्योंकि ये स्थान इतना दिव्य और अद्भुत स्थान है। अभी आप कहेंगे प्रभु जी आप तो हर स्थान को दिव्य अद्भुत ही बोलते हैं, तो इसमें कम अद्भुत कौन सा है? नहीं, वास्तवता यही है कि ये सब सभी दिव्य स्थान है, उसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट कि कौन सा दिव्य स्थान कम है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं है। और 3-4 दिन की यात्रा में हम आपको निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वही लेकर जाएंगे, और उन स्थानों में नहीं लेके जाएंगे जब आपका समय कम है, जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। वे आज के दिन में भले सुबह आपको जगाया 3 बजे 3:30 बजे बस में बिठाया, थोड़ा आनंद समुद्र किनारे आनंद मिला आपको, सूर्य भगवान के दर्शन हुए, उनकी कथा सुनी। प्रभु हम एक इस अलारनाथ नाम के बड़े दिव्य स्थान में आए हैं। ये 15 मील दूर है जगन्नाथपुरी से, पश्चिम दिशा में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर 18 साल निवास किया उन्होंने, और जब भी भगवान जगन्नाथ स्नान करने के बाद बीमार पड़ते थे और दर्शन बंद होता था, तो भगवान के विरह से वो व्याकुल हो जाते थे और विरह में व्याकुल होकर यहाँ पर आकर रहते थे अपने विरह को थोड़ा शांत करने के लिए। हर साल 15 दिन यहाँ पर रहते थे, जब वहाँ पर नेत्रोत्सव होता था तो फिर वापस चले जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के अति उत्कट विरह भावना से ये जगह जो है वो बहुत पावन हो गई है। वैसे तो ये मंदिर जो है वो जगन्नाथ मंदिर से भी पुराना है। ये जगन्नाथ मंदिर जो है कहते हैं कि 1100 साल पहले उसको दोबारा एक बार उसका मरम्मत किया गया, उसके 200 साल पहले ये मंदिर बना हुआ था ऑलरेडी। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आकर जगन्नाथ के विरह में बहुत रोते थे। तो एक बार जब वो विरह में व्याकुल थे तो अलालनाथ यानी विष्णु भगवान जो है वो उनका दर्शन कर रहे थे, तो उनको वो 2 भुजा वाले मुरली बजाने वाले मुरलीधर दिखाई पड़े इसी जगह पर, क्योंकि उनका भाव वैसा था। तो विष्णु जो है वो ऐश्वर्य भाव में है, वैकुंठनाथ जो होते हैं ना वो बड़े अपने ऐश्वर्य में रहते हैं, लेकिन मुरलीधर कृष्ण जो है वो गाय चराने वाले ब्रजवासी हैं, भाव अलग है भगवान का। तो गाय चराने वाले भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, गोपाल कृष्ण। तो उन्हें गोपाल कृष्ण मुरलीधर का दर्शन हुआ। वैसे तो वहाँ पर भी जब गए थे जगन्नाथ में तो जगन्नाथ को जब देख रहे थे तो एक बार जगन्नाथ भी उनको मुरली बजाने वाले मुरलीधर दिखाई पड़े थे। जब बंगाल से आए, अठार नाला पे शिखर का दर्शन किया, वहाँ से जो तूफानी गति से भागे तो उनको मंदिर के शिखर भी पर एक सुंदर नीला बालक बुलाते हुए नजर आया कि आ जाओ जल्दी जल्दी, और तूफानी वेग से भागे और सीधे बेहोश हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है वो सब भाव की लीला है, इसलिए बहुत लोगों को चैतन्य महाप्रभु समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि भगवान मतलब क्या, उनके पास जाना होता है और जो चाहिए वो मांगना होता है, वो भगवान है, और जो पूरे करते हैं वो जागृत देवस्थान है। किसी की मन्नत पूरी हो गई तो जागृत देवस्थान हो गया, फिर लोगों की भीड़ बढ़ती है वहाँ पर। लेकिन भगवत भक्ति का मार्ग जो है वो ऐसे लेन देन व्यवसाय का भाग मार्ग नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, इसमें भगवान अपने हो जाते हैं। हाँ, भगवान की चीज़ें अपनी करने के बदले में भगवान ही अपने हो गए तो फिर उनको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर कोई व्यक्ति राजा के पास जाके बोलती है कि तू मेरा बेटा बन जा, तो फिर उसको कुछ मांगना पड़ेगा, दोबारा कपड़े दो, घर दो, रास्ता दो, घर के सामने रास्ता बना दो, गाड़ी दो, रथ दे दो, वो तो राजा की माँ बनेगी तो सब अपने आप हो जाएगा उसका, कब कल्याण। तो भक्ति मार्ग वैसा मार्ग है, जो देने वाले भगवान हैं उनसे लेने के बदले में उनको ही अपना बनाना, ये भक्ति का मार्ग है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में इसी भाव का सबको दर्शन दिया, उनके भक्तों ने भी इसी भाव को अलग अलग प्रकार से प्रकट किया उनके सामने, इसलिए उनको अद्भुत प्राप्ति हुई कृष्ण प्रेम की। क्योंकि धर्म अर्थ प्रेम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं इसको लौकिक पुरुषार्थ कहा गया है। लौकिक पुरुषार्थ का मतलब है वर्ल्डली अचीवमेंट्स, लौकिक यानी लोक और लौकिक, जो लोक के ज़रा लोक के कनेक्शन में संबंधित हैं, लोक में संबंधित हैं, लोक यानी भौतिक दुनिया में जो लोक है ना हमारे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, भूवर लोक, भूर लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, जो भी है, तो इन लोकों से संबंधित ये चार पुरुषार्थ हैं, धर्म का पालन करना, धन कमाना अर्थ, और काम यानी इंद्रियों का भोग लेना, और फिर तंग हो गए एंड में तो फिर मोक्ष की कामना करना। पेट भर गया और परेशान हो गए तो फिर कहते हैं अभी मोक्ष चाहिए, ये सब अपने साथ संबंधित है। लेकिन तो चैतन्य महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ सिखाया, प्रेम कुमार्थो महान, जो भगवान के लिए प्रेम व्यक्त होता है वो पंचम पुरुषार्थ चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया और वही फैलाया। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय जो है, गौड़ीय नहीं, गौर चैतन्य महाप्रभु, गौर गौरांग महाप्रभु, उनके संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। हम सब लोग गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं, हमारी दीक्षा गौड़ीय संप्रदाय में हुई है। तो गौड़ीय संप्रदाय एक क्रांतिकारी संप्रदाय है, जिसमें आप सब लोग अपना अपना कार्य भगवान के समर्पण में करते रहेंगे, लेकिन हमको सिखाया जाता है कि उसके फल के रूप में कुछ अपेक्षा नहीं करनी आपको। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्ट माम, अगर आपका आपको कुचला भी जाएगा, हाँ भगवान कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस श्लोक में कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्ट माम, मुझे आप कुचल दो, मुझे आप गले लगा लो, मुझे ठुकरा दो, पास बुलाओ, दूर भगाओ, लेकिन मैं सब विधि शरण तिहारी, मैं आपके शरण में रहूँगा, मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः, कुछ भी हो जाए आप मुझे गले लगाएं, ठुकरा दें, कुचल दें, फिर भी हम आपके रहेंगे और आप हमारे प्राणनाथ बने रहेंगे। तो इस प्रकार का भाव जो सर्वोच्च भक्ति का भाव है, ये गोपियों ने प्रकट किया था, और उन गोपियों के भाव का आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर आए थे, और जो भाव गोपियों ने कृष्ण लीला में व्यक्त किया था उसी को अनुभव करने के लिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए थे। ये बहुत ही रहस्यमय बात है कि एक भगवान होकर भी सब कुछ जानते हुए भी वो ये नहीं जानते कि भक्तों को क्या आनंद मिलता है मेरी भक्ति करके, लगता है मुझसे अधिक आनंद उनको प्राप्त होता है। तो इस भाव को समझने के लिए स्वयं भगवान ने एक अवतार खर्च किया पूरा, एक अवतार पूरा क्या उसकी योजना बनाई, और सारे राधा रानी और सारे गोपियों का भाव उन्होंने अनुभव किया। तो वो गोपी के रूप में, राधा रानी के भाव में वो आए थे यहाँ पर। इसलिए जगन्नाथ दर्शन रोज नहीं होता था, तो 15 दिन के लिए व्याकुल होकर यहाँ आके रहते थे। तो ये जगह जो है, इसकी ऐतिहासिक कहानी ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोपीनाथ मंदिर हम गए थे ना, टोटा गोपीनाथ, वो ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ था तब से कनेक्शन है उसका। ये जगह भी ब्रह्मा जी के जन्म से कनेक्टेड है। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर एक पर्वत था उस समय ब्रह्मगिरी, जिसको बाद में भगवान ने नाम दिया ब्रह्मगिरी, एक पर्वत समझो था इधर। और ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तपस्या की, और उनकी तपस्या और पूजा और अर्चन से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन दिया उनको। दर्शन दिया तो उन्होंने कहा कि आपके भजन पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, तो इस पर्वत पर आपने तपस्या किया है, इसलिए इस पर्वत को ब्रह्मगिरी के रूप में जाना जाएगा आपके नाम से, क्योंकि आपने इस गिरी पर, इस पर्वत पर तपस्या किया है। तो स्वयं विष्णु ने दर्शन देकर इनको ब्रह्मगिरी नाम दिया। फिर कहा कि आप स्वयं मेरी एक मूर्ति बनाओ जिसकी 4 भुजाओं, हाँ ध्यान से सुनना आप, और इनको देख के सुनना, देखते रहना और सुनते रहना, जिनकी 4 भुजाओं जिसमें शंख चक्र पद्म गदा हो, साथ में छाती पर वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि हो, सोने का मुकुट हो, नीले रंग का कमल हाथ में हो, गुंजमाला भी हाथ में हो, गुंजमाला यानी वो एक बहुत स्पेशल माला होती है, वो पेड़ में आती है, पेड़ एक पौधा होता है वृंदावन में, उस पेड़ में जैसे अपना होता है ना वो मटर या चौली या मटकी कैसे आती है, उसकी शेंग होती है, शेंग, हाँ उसके अंदर वो सूख जाती है तो फिर वो आपको दाने मिलते हैं सब धान्य के, उसी तरह से वो गुंजमाला के गुंजमणि जो है वो तैयार होते हैं वृंदावन में कुछ जगह पर, आज भी मिलते हैं गुंजमाला। चैतन्य महाप्रभु पहना करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने फिर उसको रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट भी दिया है। एनीवेज लंबी लंबी कहानी है पूरी। तो वो कहते हैं कि उनके हाथ में गुंजमाला भी हो, गजमणि माला, फिर उनके शरीर पर एक जनीव हो ब्राह्मण थ्रेड, हाथ में रत्नों की मतलब हीरे की अंगूठी हो, और पीला वस्त्र पीताम्बर पहने हो, और पैरों में घुंघरू भी हो। ऐसा पूरा विस्तार भगवान ने वर्णन किया कि ऐसी मूर्ति बनाओ। फिर ब्रह्मा जी ने और साथ साथ में बताया कि ये जो मूर्ति है वो एक ही पत्थर में बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये हाथ जोड़ दिए फिर ये जोड़ दिया फिर वो सब मूर्ति बनी, एक पत्थर में ये सारी चीज़ें, उसका जो मूर्ति क्या कहते हैं उसको, स्थापत्य शास्त्र, शिल्प शास्त्र जो है वो एक ही मूर्ति में होना चाहिए। जैसे हमारे मायापुर की जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है वो भी एक चौकोनी पत्थर में बनी गई है, 1000 किलो की मूर्ति है वो, लेकिन उसका पत्थर जो था वो कई हज़ार किलो था, उसको जो काट काट के बनाया गया तो बची हुई मूर्ति जो है वो 1000 किलो की हो गई। एक संद मूर्ति है वो, उसमें कोई जोड़ नहीं है, वैसे वो एक मूर्ति एक पत्थर में होना चाहिए, और साथ साथ में गरुड़ जी की स्थापना भी होनी चाहिए। ऐसा पूरा विस्तार में इंस्ट्रक्शन दिया, तो ब्रह्मा जी ने फिर ये मूर्ति बनवाई और यहाँ पर स्थापन की। तो उस मंदिर में जब आप जाएंगे तो वो मूर्ति जो है विष्णु की भगवान की, वो मूर्ति है जो ब्रह्मा जी ने स्थापन की थी। उसके कई सैकड़ों वर्ष के साथ बाद में, मतलब मेरे ख्याल से सत्ययुग की बात है ये, सत्ययुग की शुरुआत में ये सब हुआ, तो अभी अभी यानी कि सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग होने के बाद करीब 21 लाख साल के बाद की बात है, जो साउथ इंडिया में अलवार नाम के बड़े भक्त हुआ करते थे। अभी इस बार एक नाटिका होगी हमारे नाटिका उत्सव में तिरुमंगई अलवार की, 9 अलवार में से 1 अलवार की कहानी है वो, ऐसे 9 अलवार थे वो, बहुत ही विशेष प्रकार के और विचित्र भक्त थे वो। उनका चरित्र जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे भक्त हो सकता है, लेकिन वो थे ऐसे, और इतिहास में उनका बड़ा गौरव है अलवार। तो ये अलवार जो है वो साउथ इंडिया से, यानी कि श्री संप्रदाय के थे वो, और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य महाराज ने उसको स्थापन किया था, लक्ष्मण के अवतार थे वो। तो रामानुजाचार्य की तरफ से जो संप्रदाय आया है उनका नाम है श्री संप्रदाय, क्योंकि वो लक्ष्मी जी उनका अंतिम गंतव्य स्थान है और लक्ष्मी जी भगवान से हमें जोड़ देती है, इसलिए वो श्री नाम दिया है लक्ष्मी जी का। तो वो संप्रदाय से वो थे भक्त, तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर पूजा आरंभ किया भगवान का। और रामानुजाचार्य का विशेषता थी कि रामानुजाचार्य उनके अवतार में जितनी जितनी जगह गए विश्व भर में, मतलब भारत भर में, हर जगह पर उन्होंने भगवान के विग्रहों का जो पूजन है उसका विधि जो है बहुत उच्च दर्जे पे लेके गए। वो हर जगह कुर्म देश में, श्रीरंगम में, कांचीपुरम में, जहाँ जहाँ वो भगवान विष्णु के मंदिर स्थापना किया या तो जीर्णोद्धार किया या तो पूजा किया, हर जगह पर एक स्टैंडर्ड बनाया उन्होंने पूजा का। तो उन्होंने यहाँ पर भी आकर भगवान विष्णु का बहुत उच्च दर्जे से पूजन किया, इसलिए उनके द्वारा पूजित भगवान को नाम पड़ा अलवर नाथ, अलवर के नाथ, फिर हुआ अलार नाथ, फिर हुआ अलाल नाथ। तो बंगाल में इसको र नहीं बोल सकते तो वो ल हो गया, तो उसका मूल नाम है अलवर नाथ, अलवारों के नाथ, फिर अलार नाथ, फिर अलाल नाथ, ऐसे हो गए। जब अलवर यहाँ पर आए और उन्होंने पूजन शुरू किया भगवान का, तो बड़े राजा ने यहाँ के, कुछ नाम राजा का बड़ा नाम है यहाँ का, तो उन्होंने उनको बहुत एकड़ ज़मीन दिया, बहुत धन दौलत दिया, उनको सपोर्ट किया वहीं मंदिर को अच्छी तरह चलाने के लिए। यथावकाश राजा भी चले गए, सपोर्ट भी ख़त्म हो गया, इनका परिवार बड़ा, बहुत सारा कारोबार उनका, मतलब मेंटेनेंस का हिसाब किताब बड़ा, तो मंदिर के द्वारा उनका कुछ हो नहीं पाया। तो फिर वो भिक्षा मांगकर अपने आप को चलाने लगे, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं और पेट को संभालने के लिए बाहर भिक्षा मांग रहे हैं। और टर्न बाय टर्न एक एक अलवर का भगवान की पूजा का समय आता था। आज भी अगर वृंदावन जाएंगे आप तो इतने मशहूर मंदिर है वृंदावन के, उन सबके गोसाइयों का एक शेड्यूल बना हुआ है, किसी का एक महीना, किसी का 15 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का उत्सव में, किसी का अधिक मास में 2-2 दिन, ऐसे उनका बहुत शेड्यूल है। नंदगांव में, बरसाने में, वृंदावन के मंदिरों में, गोस्वामियों का पुरातन काल से सब बना हुआ है शेड्यूल, वैसे इनका भी यहाँ पर शेड्यूल बन के वो बाहर जाके भिक्षा मांगते थे और उन दिनों में अपनी सेवा भी करते थे। तो एक समय ये अलवरों का जो वंशज है ना, मतलब पुत्रों का ऐसे जो वंशज है, एक वंशज था श्री केतन, वो श्री केतन की सेवा आई। और देखो पैसा तो है ही नहीं, धन तो नहीं है, तो एकदम सिंपल भोग लगाते थे भगवान को, उसमें खीर होती थी हमेशा, चावल की खीर, और वो खीर निश्चित रूप से वो भगवान को अर्पण करते थे। तो अभी क्या करेंगे, अभी बाहर जाके भिक्षा नहीं मांगेंगे तो परिवार को कैसे पैसा मिलेगा, इसलिए वो क्या करते, अपने बच्चे को या अपनी बीवी को या खुद कभी या ऐसे किसी को रख के बाहर जाते थे। तो एक दिन श्री केतन का जब टर्न आया तो श्री केतन ने क्या किया, अपना जो पुत्र है मधु, उसको कहा कि देखो ऐसा है, तेरी माता खीर बनाएगी और तुमको भगवान को अर्पण करना है, मैं जा रहा हूँ भिक्षा मांगने के लिए। तो बालक ने कहा, पिताजी मैं तो बालक हूँ, मुझे कुछ मंत्र वंत्र नहीं आते, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो योग्य भी नहीं हूँ उसके भगवान के ऑल्टर पे जाकर उनको ऑफरिंग करूँ, तो मुझे आप मंत्र सिखाइए, फिर मैं सीखूँगा तब मैं करूँगा। तो बोले कुछ ज़रूरत नहीं मंत्र सीखने की, आप मम्मी थाली बना के देगी, आप तुलसी रख के सामने रख देना, बस बाद में भगवान दे देंगे उसको। तो क्या करेगी, पिताजी का आदेश था, पिताजी चले गए 3-4 दिन के लिए। और फर्स्ट टाइम भगवान का भोग बनाया उन्होंने, भगवान के सामने रखा वहाँ पर, और खेलने चला गया। वो वापस लौट के आया तो देखता तो थाली वैसी है, कुछ खाया पिया कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, भगवान पहले उन्होंने जो जाके रखते समय बोला था, भगवान मैं तो योग्य नहीं हूँ और मेरी कुछ श्लोक मुझे आते नहीं हैं, कुछ विधि विधान मैं सीखा नहीं हूँ। तो पापा ने कहा है कि आपके सामने रखो और आप खाएंगे उसको, तो आप मैं रख रहा हूँ आप खा लो उसको, ऐसे रख के वो खेलने चला गया। कुछ देर बाद में आया, आधा घंटे के बाद जैसे समय बताया था उसको, आधा घंटे के बाद निकलना है, तो देखा तो थाली वैसी की वैसी है। तो फिर कहते हैं, अरे भगवान मैं जानता हूँ मैं इसके योग्य नहीं हूँ, ऐसा है कि मैं योग्य नहीं इसलिए आप नहीं खा रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे मंत्र वंत्र नहीं आते हैं, कैसे आप खाते हो मुझे पता नहीं है, पापा ने कहा था कि आपको रखना है, मैं रख के चला गया था, प्लीज़ खाइए आप कृपा करके खाइए, आपके लिए रखा गया, आप ऐसे बिना खाए छोड़ देंगे तो मेरे पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। उनको लगता था कि भगवान रोज़ खाते हैं उसको। भगवान जो है वो अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। वो नेत्रों से भी भोजन कर सकते हैं, वो नेत्रों से ही करते हैं, वो सब कुछ हमारे लिए प्रसाद के रूप में छोड़ देते हैं। उनको मुँह से खाने की ज़रूरत नहीं हमारे जैसे, हम लोग नेत्रों से नहीं खा सकते हैं, वो नेत्रों से भी खा सकते हैं। उनके सब अंग जो है वो बाकी अंगों के भी काम कर सकते हैं। तो भगवान ने तो स्वीकार कर लिया था उसको, लेकिन बालक तो ज़िद्दी है, वो तो सिंपल हार्ट है उसका, बहुत कोमल हृदय है, और क्या कहते हैं निरागस यानी कि निष्पाप है वो बालक, तो विनती कर रहे हैं वो। तो वापस ऐसा बोल के चला गया खेलने के लिए। फिर लौट के आए तो फिर वैसे थाली पड़ी है, तो रोने लगा वो बहुत कि नहीं भगवान आपको खाना चाहिए, कृपा करके खाइए इसको, स्वीकार कीजिए, मेरे मम्मी ने बनाया, मैं आपको विनती कर रहा हूँ, मुझे श्लोक नहीं आते हैं, बोल चुका हूँ आपको, लेकिन कृपा करके इसको आप खाइए, बहुत रोता है वो। और फिर चला जाता है, तो चौथी बार आता है तो थाली पूरी खाली मिलती है उसको, बड़ा खुश हो जाता है, खाली थाली दे के मम्मी के पास आता है, वो कहता है ये लो थाली। तो मम्मी कहती है प्रसाद किधर है, तो भगवान ने खा लिया प्रसाद। क्या बात कर रहे हो, हाँ मैं कह रहा हूँ भगवान ने खा लिया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये तो बालक है, तो खुद खा रहा है या तो दोस्तों को दे रहा है या तो कुत्तों को खिला रहा है या तो किसी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी क्या बोलेगी माता, अभी वही तो भोजन जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो उनके लिए भी भोजन था, तो अभी कुछ नहीं आया वापस, तो उपवास, रात को भोग लगाया फिर भी भगवान ने खाया, सेकेंड डे लगाया तो भगवान ने खाया, दोनों बार तीनों बार, थर्ड डे भी भगवान ने खाया। हरे कृष्णा,
अभी आरती का टाइम है, 10 मिनट
अभी शुरू हो गया आरती,
अभी 1 बजे होने वाला था, अभी तो 1:15 में पौने 2 हो गया। अभी 10 मिनट रुक जाए, आरती के बाद
करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।